हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 24-28। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थामा वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिम्बफल धरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि वस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्मादवेति बर्हापीरं नटवरवपुकर्णियो कङ्कारा बिभ्रात्वासः कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यम् रन्ध्रार्सेनो रन्ध्रार्वेणो अधरसुधया पूर्णयोगोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्गासयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की। तीसरा स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 24 से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से किस प्रकार इस भौतिक जगत से भगवान के समस्त पार्षद जो यदुवंशी थे, वो किस प्रकार से, किस लीला के अंतर्गत इस भौतिक जगत से उनका प्रयाण हुआ, उसके विषय में विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं। वे कहते हैं, पुर्याम कदाचित की क्रीड़त फिर यदु भोज कुमार कै कोपिता मुनय शेपुर भगवन मत को विदा। पुर्याम कदाचित क्रीड़त फिर यदु भोज कुमार कै कोपिता मुनय शेपुर भगवन मत को विदा। पुर्याम कदाचित, पुर्याम मतलब द्वारिकापुरी में, कदाचित एक बार। एक बार क्या घटना हुई? क्रीडत भी का मतलब होता है खेलते हुए या क्रीड़ाएं करते हुए। यदु भोज कुमार का, यदुवंशी और भोज के वंशज, राजा भोज के वंश और राजा यदु के वंशज के जो कुमार थे, यानी जो राजकुमार थे, नवयुवक थे, वो आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन उनके इस आनंद लेने की विहार जो तरीका था, उससे क्या हुआ? कोपिता मुना यहाँ, उन्होंने कुछ मुनियों को कोपित कर दिया, यानी क्रोधित कर दिया। शेपुर अर्थात उन्होंने इस क्रोध के उपरांत इतना उनको तंग किया मुनियों को, कि पहले क्रोध किया, देन शेपु अर्थात श्राप दे दिया भगवान को विदा। भगवान अर्थात भगवान की मत मना इच्छा को विदा। वास्तव में भक्तों, ये भगवान के पार्षद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो यदुवंशी हैं वो सब भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान की लीला को विस्तृत करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन अब क्योंकि भगवान को ही अपनी लीला समेट कर अपने धाम जाना था, तो भगवान एक लीला के अंदर एक और लीला ऐड करते हैं, कि उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण जो सारे भक्त हैं, जो भगवान के, तो ये सब भगवान की लीला है जिसके कारण उनको क्रोध आया और उन्होंने, उन ऋषियों ने यदुवंशियों के जो राजकुमार थे उनको श्राप दे दिया। अनुवाद देखिए, एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महा मुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है, जो बात है श्लोक में, वो क्या है? शेपु भगवान मत कोविदा, ये भगवान की इच्छा से हुआ। तो जो भी लीलाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें आर्ग्यूस नहीं होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भला कैसे। तो ये जो है उसको एज इट इज हमको श्रवण करना है और ये जानने की जिज्ञासा करनी है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा होता है उसी में सबका कल्याण होता है। तो भगवान ने क्या किया ये जानना जो है वो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आनंददायक है, भगवान की लीलाओं को जानना। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये तो जो अभक्त हैं वही सोचते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं को दिव्य नहीं समझते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के वे संगी जो यदु तथा भोज वंश के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव नहीं थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे वो पवित्र यदु या भोज वंशों के उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध हों, क्योंकि स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित क्रुद्ध होना क्रोध प्रदर्शन करना, इसलिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि जो लोग जान सकें कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि वो भगवान की लीला हमेशा हमारी शिक्षा के लिए होती है। तो भगवान ने उन संत जो ऋषि हैं, जो मुनिगण हैं, उनकी बात का, उनके शब्दों का आदर किया और अपने वंशजों को भी उनके शाप के कारण मरने, मतलब भगवान बचा सकते थे, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमको ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो मेरे वंशज हैं, फिर भी मुनियों के श्राप से मैं उनको नहीं बचा रहा हूँ। तो आप लोगों को सदैव जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, उनका आदर करना चाहिए। कभी भी उनको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि उनका हृदय जो है वो दुखी हो। इसीलिए यही शिक्षा भगवान हमें इस प्रसंग से में देना चाहते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों में कभी भी कोई अपराध ना करे, क्योंकि अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं तो गुरु और शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कभी भक्त रूठ जाता है तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो हुआ यूँ था कि भगवान के ही पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र सांब, जो कि बहुत ही सुंदर थे, अपने मित्रों मतलब जो यदुवंशी हैं और राजभोज के पुत्रों के साथ खेल रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे द्वारिकापुरी में और वो वन में बैठ के तपस्या कर रहे थे। सांब और उनके मित्रों ने कहा, ये ऋषि मुनि है ना, तपस्या करते हुए दिखते हैं, परंतु ये ढोंग करते हैं और हमसे बहुत सारा दान और लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। और जब इन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए तो कैसी परीक्षा ली कि सांब को स्त्री के जैसा श्रृंगार करके उसके पेट पे कपड़ा बांध लिया और उन ऋषियों के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगे, आप बताइए कि इसके पेट से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी। ऋषि मुनि तो जानते ही थे क्योंकि वह अंतर्यामी थे और उन्होंने देखा कि भगवान के वंशज होकर हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं, तो जो साधारण जनता होगी वो यही कहेगी कि भाई ये तो दृष्टांत है ना, जैसे शास्त्र क्या कहता है कि जो बड़े लोग करेंगे छोटे लोग उनका ही अनुगमन करेंगे। भगवान भगवत गीता में ऐसा बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तदेव तरोजना, कि जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है तो साधारण जनता उसका अनुक्रमण करती है। तो ऋषियों ने सोचा भगवान के पुत्र यदि ऐसा कार्य करेंगे तो सारा संसार उसका अनुक्रमण करेगा, ऋषि मुनियों के साथ व्यवहार तो एक खिलवाड़ बन जाएगा, सब उनका अनादर करेंगे। तो इस क्रोध, इसलिए उनके मन में भगवान की इच्छा से क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने यह यदुवंशियों को यह श्राप दिया कि इसके पेट से कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा लोहे का टुकड़ा उत्पन्न होगा जो कि पूरे यदुवंश का सर्वनाश करेगा। और आगे उद्धव जी कहते हैं, ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संसृष्टा रथैर्देव विमोहिता ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिता ततः कतिपय। ततः माने उसके उपरांत, जब उनको श्राप मिल गया, कतिपय मासे यानी कुछ एक मास बिताकर, कुछ महीने हो गए
उसके उपरांत ऋषि भोजक भोजन दका दे। ऋषि यानी ऋषि के वंशज, भोज यानी भोज के वंशज, अंधक आदय यानी अंधक के पुत्र इत्यादि। ययु प्रभासम, ययु मतलब वो गए प्रभास क्षेत्र में, प्रभास नामी तीर्थ स्थान में। संहृष्टा अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक, रथ है का मतलब अपने अपने रथों पर, देव यानी कृष्ण द्वारा विमोहिता मोहग्रस्त, तो वो मोहग्रस्त हो गए, उनको श्राप मिला था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अनुवाद देखिए। कुछ एक महीने बीत गए तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त ऋषि भोज तथा अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारिका में ही रह गए। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कहते हैं, तत्रस्नात्वा पितृन देवान ऋषिश्चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधा। तत्र स्नात्वा पितृन् देवान् ऋषिश्चैव तदंभसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधु। तत्र स्नात्वा, वहां पर जाकर स्नान किया। कहां पर? प्रभास क्षेत्र जो के तीर्थ स्थान है वहां पर गए, वहां पर स्नान किया। पितृन् देवान् ऋषिन् च एव तत् अम्बसा, अम्बसा माने जल से। जल से क्या किया, पितृ यानी पितरों को, देवान यानी देवताओं को, ऋषिन मानी ऋषियों को, च एव निश्चित रूप तत् उसको अम्बसा जल दिया यानी उनका पिंडोदक संस्कार किया। तर्पयित्वाथ तर्पण किया मतलब प्रसन्न होकर, और अथ तत्पश्चात विप्रेभ्यो यानी ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दान दिया, गावो यानी गवों का, बहुगुणा अत्यंत ही उपयोगी ददु दान में दी। अनुवाद, वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों देवताओं ऋषियों तथा का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दी। शिला प्रभुपाद देखिए, शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवत भक्तों में कई विभाग हैं जिसमें नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़े। साधना सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्त में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शन करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी भगवान के भक्तों की कैटेगरीज बताते हैं कि भगवत भक्तों के बहुत सारे विभाग होते हैं। कुछ तो नित्य सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध वो कभी भी नहीं गिरते, वो उनके कार्यकलाप, वो कभी ऐसा होता है भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं लेकिन उनका पतन कभी भी नहीं होता है, वो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। लेकिन जो साधना सिद्ध होते हैं वो तो इस भौतिक जगत में जो भक्त हैं और जब बहुत अच्छी साधना करते हैं उसके बाद उनको चुना जाता है तो वो साधना सिद्ध भक्त होते हैं। लेकिन जो साधना सिद्ध भक्त होते हैं ना उनके भी दो प्रकार होते हैं, कुछ तो मिश्रित होते हैं और कुछ उनमें से शुद्ध होते हैं। जो मिश्रित भक्त होते हैं वे भी कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शन करते हैं, मतलब वो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं और कभी कभी वो ऐसा कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं, और उनमें भी कुछ तो मिश्रित होते हैं और कुछ शुद्ध होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया तल्लीन रहते हैं। वो कहीं पर भी रहे वो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं और किसी भी अवस्था में स्थित होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम प्राप्ति है। अब यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि भगवान का प्रेम दिल में नहीं है तो आप किधर भी चले जाओ कोई लाभ नहीं, लेकिन यदि प्रेम भाव और श्रद्धा से घर पे बैठकर भी भगवान की सेवा कर रहे हो तो फिर आपको घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम प्रणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो लोग इतने बड़े चरे नहीं हैं उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नित्य कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रवास गए उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमित हर मनुष्य ईश्वर देवताओं महान ऋषियों अन्य जीवों तथा सामान्य जनों पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार के योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थान गए थे उन्होंने राजसी दान में भूमि स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गवें बैठ करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति को ये सारे कर्तव्य करने चाहिए। जो शुद्ध भक्त हैं बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं भगवान की भक्ति में, सन्यासी हो गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, वो भले ये कार्य नहीं करते हैं, वो केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उससे ही उनकी साधना जो है वो सिद्ध होती है। उनको ये रिचुअल्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अभी तक इतने उन्नत नहीं है उनको अवश्य करने चाहिए। और उन्होंने जो यदुवंशी थे वो जब प्रवास क्षेत्र में गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान दिया। क्या क्या दान दिया अगले श्लोक में बताते हैं। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जनिकम बलान यानम रथानि भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जनिकम बलान यानम रथानि भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। हिरण्यम अर्थात सोना, रजतम अर्थात रजत, शयम अच्छा बिस्तर, वासंसी वस्त्र, अजिना यानी आसन के लिए पशु चर्म, कंबलान कंबल, यानम अर्थात घोड़े रथ, इभान यानी हाथी, कन्या यानी लड़कियां, धराम यानी भूमि, वृत्ति करीम अपि अर्थात आजीविका प्रदान करने के लिए अपि भी। अनुवाद, ब्राह्मणों को दान में ना केवल सुपोषित गौवें दी गई अपितु उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टि से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था उन्हें कन्याएं दी जाती थीं, अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी पारिवारिक लोग उनके सभी आवश्यक वस्तुएं उन्हें प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित होते। अब यहाँ पर उस समय के ब्राह्मणों की बात श्री प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि वो बस प्रजा को लूटते रहते थे, धन चाहिए दान चाहिए और मतलब वेतन प्राप्त करके वो शिक्षा देते, नहीं ऐसा नहीं है। वो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते थे और वेतन भोगी सेवकों की तरह वो कार्य नहीं करते थे। वो शिक्षा देते थे, जितने भी छोटे बच्चे होते थे उनके गुरुकुल होते थे ब्राह्मणों के, उनको शिक्षा दी जाती थी। ऐसा पवित्र आचरण वो करते थे जिससे समाज का उत्थान होता था। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग यह जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थीं समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तल्ब बन गई तो वे पतित होकर ब्राह्मण बंधु अर्थात अयोग ब्राह्मण बन गए। अब देखो पहले तो वो बहुत ही प्योर होते थे, जब भगवान इस धराधाम पे होते थे तब, और जितनी भी उनकी आवश्यकताएं थी वो सामान्य जनों के द्वारा पूरी होती थी। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे, वो एकदम प्योर लाइफ गुजारते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे कलयुग का आगमन हुआ तो वो ब्राह्मण पतित हो गए, और क्योंकि वो पतित हो गए हैं तो फिर वो अब ब्रह्म बंधु कहलाने लगे, क्योंकि उनकी जो योग्यताएं हुई थी वो खत्म होती गई और उनके मन में लोभ और लालच ने जगा ले ली। अयोग्य ब्राह्मण जब वो बन गए उसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जा सकता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता के भगवान के उस वाक्य को याद कराते हुए बताते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने जो ये चतुर्वर्ण बनाए हैं, चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ ग्रस्त और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यासी, ये आश्रम हैं। ये तो हर वर्ण का जो भी व्यक्ति होगा उस आश्रम में उसको रहना पड़ेगा। पहले 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 ग्रस्त और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और उसके उपरांत संन्यास। लेकिन ये सारे जो भी आश्रम है वो वर्ण के अनुसार, वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, गुण कर्म विभाग से। भगवान जी का जाति जो है उसके बल पर नहीं कि किस खानदान में उत्पन्न हुए हो, तब ये गुण, जैसे आपके गुण हैं, अगर आपके अंदर शौर्य है, तेज है और दूसरों को बचाने की इच्छा और वो प्रबल है कि कैसे संसार की सुरक्षा की जाए तो क्षत्रिय है। यदि आपके मन में पवित्रता है, संकल्प दृढ़ है, भगवत भक्ति की इच्छा है और शास्त्रों में अथवा भगवान की भक्ति में प्रेम है तो ब्राह्मण है। तो इस तरह से वैश्य जन का व्यापार बिजनेस इत्यादि करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वैश्य, जो इन तीनों वर्णों की सहायता करते हैं, तो जिसके अंदर जैसा जैसा गुण होगा वैसा वैसा उसका वर्ण हो जाता है। जाति के अनुसार नहीं, जीवन के अनुसार नहीं कि कहाँ कहाँ उसका जन्म हुआ है, जैसा कि अभी वर्तमान समय में हो रहा है। आगे उद्धव जी कहते हैं, अन्नम चोरु रसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोवी प्रार्थ था सव शूरा प्रणेम प्रणेम भुवि मूर्धि मूर्धि भी अन्नम चोरु रसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोवी प्रार्था सव शूरा प्रणेम भुवि मूर्धि भी। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों की भेंट किया, और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। कितना सुंदर तरीके से उन्होंने आचरण किया, ब्राह्मणों पहले तो तर्पण किया, फिर ब्राह्मणों को अन्नदान दिया, उनको सोना चांदी और भूमि इत्यादि दिया, उनको गौ दान किया, और उसके उपरांत उनको बहुत ही सुंदर भगवान को प्रसाद जो अर्पण किया वो दिया, और उसके उपरांत उनको नमस्कार किया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी कहते ये सब एक मानव सिद्धि के लिए सर्वथा अनुरूप है। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित तीन सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तीन सिद्धांत बताए श्रील प्रभुपाद ने, ये है गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बचाए रखना, तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। ये भगवान की भक्ति, ब्राह्मण संस्कृति और गौओं का पोषण या गौओं की सुरक्षा, ये है मानव जीवन का सिद्धांत। अगर ये तीन परफेक्ट है, यदि किसी मानव समाज में भगवान की भक्ति हो रही है, गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा हो रही है, तो समझो दिस इज अ परफेक्शन। आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते, भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, न रोग है न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितना ही उन्नति क्यों न कर ले, उसे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। भले कुछ भी प्राप्त कर लो, भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु पर यदि अधिकार प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवत भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जो कुछ भी होगा संसार में, जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, चाहे वो विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो, बल हो, सब कुछ छोड़ के जाएंगे, और जब जाएंगे तो वापस जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता जीव, तभी कुछ कभी भी तब तक उसे इन दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण या वैष्णव जन ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ तथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि, जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकता है, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है। उन्हें ना तो किसी वैज्ञानिक द्वारा या भौतिकवादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे कि हर वस्तु भगवान की कृपा से मिली है। जिस जिस वस्तु पर हमारा जीवन निर्भर करता है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, जल हो, वो सब कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होते हैं। ये जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो अनाज का एक दाना, कितनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, एक दाना अनाज का कभी भी वहां पर नहीं, नो ग्रैन वहां पर उगता नहीं है, बल्कि ये तो भगवान की कृपा से पृथ्वी से उपज होती है। ये जो जल हम पीते हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। वो तो वैज्ञानिक कह देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल प्राप्त होता है, लेकिन पूछा जाए उनसे कहाँ से आती है हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। जो भी हो, जिस जिस वस्तु पर हमारा जीवन निर्भर है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो वैष्णवजन होते हैं, कभी भी कोई वस्तु ऐसी स्वीकार नहीं करते जो भगवान को भोग ना लगी हुई। पहले भगवान को ऑफर किया जाता है, उसके उपरांत ही उसका सेवन किया जाता है प्रसाद के रूप में। मनुष्य को श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस तथ्य से सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ तथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है, उन्हें ना तो किसी वैज्ञानिक द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास के साथ स्थापित की गई योग्यशालाओं या फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और उन्होंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है और वे वैष्णव कहलाते हैं, किंतु दोनों ही यज्ञ के उचिष्ट को ही उचिष्ट भोजन को पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में कहा गया है कि जो यज्ञ उचिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। यज्ञ शिष्टाचिन संतो मुच्यंते सर्व किर्विषय पुंजते त्वगम पापा ये पचन ध्यात्म कारणात्। अगर भगवान को समर्पित करके भोजन ग्रहण किया जाता है तो वो हमारे लिए भगवान के प्रति हृदय में प्रेम आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन यदि हम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, ये पचन थे आत्म कारणात्, अगर केवल आत्म कारणात के लिए भोजन पकाते हैं तो वो भोजन जो है वो साक्षात पाप का स्वरूप है। भुंजते रे त्वगम पापा, और पाप के रिजल्ट में हमको दंड भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रमाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रभुत परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कि पहले यही शिक्षण दिया जाता था, जो भी बच्चे होते थे बड़े बड़े कुलों में, उन्हें कि शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, उनको आदर नमस्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये शिक्षण दिया जाता था। उरुरस शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। अभी यहाँ पर ओरू रसम का मतलब होता है जो कि वास्तव में सात्विक भोजन होता है, जो कि भगवान को अन्नम चोरु रसम तोभ्या, ये भगवान को भोग लगाने के योग्य होता है। हर कोई वस्तु हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, जो भगवान के योग्य भोग लगाने के योग्य होती है। तो समस्त व्यंजन जो सात्विक थे वो भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं, अतएव उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में कहा गया है कि भगवान केवल फल फूल पत्ती तथा जल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही भगवान के प्रमाणिक भेंट, भगवान को प्रमाणिक भेंट की एक मात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित किए गए भोजन पदार्थ को में अवश्य वो अवश्य खाते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम देव तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यते तदा हम भक्ति परतम अश्नामी प्रियतात्मना, कि वो प्रेम के साथ मुझे खिलाते हैं तो मैं उनके उस प्रेममयी भोजन को स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं खाता हूँ, भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं उस भेंट को जो भगवान को प्रेम से दी जाती है। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्मित करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह सूचना यह अनुसूची घटना सॉरी यह समूची घटना समस्त संबंध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद की जाए तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान अपने हर कार्यकलापों से हमारे लिए एक शिक्षण देते हैं, जैसा कि इस शाप के कारण को बताते हुए कहते हैं कि ये केवल भगवान की इच्छा है। और भगवान क्योंकि अपने पार्षदों को दोबारा अपने धाम लेके जाना चाह रहे थे तो भगवान ने ये लीला की थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नामक तीसरा अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। बोल श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन के बाहर जो हम लीलाएं पढ़ रहे थे वो समाप्त हुई। और अब किस तरह से विदुर जी और मैत्रेय जी का आपस में मिलन होता है, यदुवंशों का नाश होता है, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत छोड़िएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।